द्रीशांत और पल्लवी की शादी को कुछ वक्त गुजर गया था। दोनों शादी के बाद शिमला घूमने गए थे और ये आहाना, अंतरा व निशांत की ओर से उनका वेडिंग गिफ्ट था। फाइनेंस आहाना ने किया था, आइडिया अंतरा का था और जगह निशांत ने चुनी थी। फिलहाल तो वो नया नया शादीशुदा जोड़ा शिमला की ठंडी खूबसूरत वानियों में अपने मोहब्बत के रंग बिखेर रहा था। रोज ही वीडियो कॉल पर घर में सबसे बात होती है और साथ में वहां के खूबसूरत नज़ारों की ढेरों तस्वीरें भी भेजी जाती हैं। उनके लिए ये वक्त खुशनुमा और मोहब्बत के एहसासों से सराबोर था। अंतरा अपनी नई फटफटिया उर्फ बाइक पर पूरे कानपुर में हुड़दंग मचाए फिरती थी। उसकी बढ़ती शरारतों पर लगाम लगाने वाला द्रीशांत की गैर मौजूदगी में वो पूरी तरह से निश्चिंत और बेलगाम हो चुकी थी और अपनी आज़ादी के दिनों को खुलकर जीती थी, जिसमें उसका बराबर का साथी था निशांत। बचपन से सब कांड साथ ही अंजाम देते थे और ये पार्टनरशिप अब भी जारी थी। आहाना भाई की शादी के बाद अपनी दिनचर्या में लौट चुकी थी। दिल की गहराइयों में अक्षय से हुई उन दो मुलाकातों की यादों को बसाए, उन खूबसूरत एहसासों को अपने मन में सजाए वो दिन रात गुजार रही थी। बाकी सब तो ठीक था, पर एक कसक थी मन में और दिल को इंतजार अक्षय की पहल का। कहकर तो गया था कि फ़ोन करेगा, पर इतने दिन बीतने के बाद भी ना तो उसका कोई फ़ोन आया और ना ही मैसेज। कभी कभी आहाना बहुत बेचैन भी हो जाती थी, पर फिर खुद को ये समझाकर शांत कर देती कि उसे वक्त नहीं मिलता होगा। दूसरी तरफ अक्षय वाकई में यहाँ आने के बाद बहुत व्यस्त हो गया था। डबल शिफ्ट में काम करता और उसके बाद तो मरने की सी हालत होती थी। घर पहुँचते ही बेड पर पसर जाता और चंद घंटों की नींद के बाद फिर से गधा मजबूरी करने निकल जाता। आहाना का ख्याल हर पल जहन में रहता था। दिल उससे बात करने, उसकी मीठी सी आवाज़ सुनने को बेताब था, पर मजबूरी ऐसी कि तरसते हुए दिन रात गुजार रहा था। शाम का वक्त था। आहाना जितेंद्र जी के संग बाजार से वापस लौटी थी और अब फ्रेश होने कमरे में आई थी। उसने अपना फ़ोन निकालकर देखा तो स्क्रीन पर काफ़ी मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस चमक रहे थे। उन्हें देखते हुए आहाना के रुख पर अजीब से भाव उभरे थे। कोफ्त ही तो हुई थी उसे उन कॉल्स और मैसेजेस को देखकर। दिल किलकिलाया था और माथे पर सिलवटें पड़ गई थीं। आहाना ने कुछ पल अजीब निगाहों से स्क्रीन को घूरा, फिर नोटिफिकेशन स्लाइड करके हटाते हुए फ़ोन बेड पर रखकर खुद कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर बाहर आई, ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ी रही थी कि अचानक ही उसका फ़ोन बज उठा। जाने क्यों पर फ़ोन की रिंग सुनकर उसके चेहरे पर गुस्से, चिढ़, नागवारी जैसे घाव उभरे थे। उसने अपने कदमों की दिशा को मोड़ा, फ़ोन उठाकर देखा तो कोई अनजान नंबर स्क्रीन पर चमक रहा था। आहाना की आंखें गुस्से की शिद्दत से सुर्ख रंग में रंग गई। उसका हमेशा शांत रहने वाला चेहरा भी गुस्से से जल उठा। उसने कॉल रिसीव किया और एकदम से भड़क उठी। कितनी बार मना किया है हमने तुम्हें कि हमें फ़ोन मत किया करो, पर तुम अपनी इन घटिया हरकतों से बाज नहीं आते। बार बार अनजान नंबर से हमें फ़ोन और मैसेज करके परेशान करते रहते हो। तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती कि हमारा तुमसे ना पहले कोई रिश्ता था और ना ही अब हो सकता है। तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, इसलिए पीछा छोड़ दो हमारा। अब तुम्हारी हरकतें हमारी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। हम तुम्हें ये आखिरी बार समझा रहे हैं कि हमारा नंबर डिलीट कर दो और दोबारा कभी हमें फ़ोन या मैसेज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब तक हम चाचा जी के कारण चुप थे, बात नहीं बढ़ाना चाहते थे। पर अगर अब तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और दोबारा हमें फ़ोन या मैसेज करके परेशान किया तो हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब बातें सच सच भैया को बता देंगे। हमारे भैया को तो जानते ही हो तुम। अगर उन्हें भनक भी लगी तो उसके बाद तुमसे भैया ही निपटेंगे और वो यूं ही नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि दोबारा कभी हमें फ़ोन करने की जरूरत ना करो। आहाना ने दूसरे तरफ मौजूद शख्स को कुछ बोलने का मौका तक नहीं दिया। गुस्से में एक सांस में सब बोलती चली गई और चेतावनी देते हुए फ़ोन काट दिया। चिल्लाने और इतना बोलने के कारण उसकी सांसें उखड़ने लगीं। फ़ोन काटने के बाद उसने चंद गहरी सांसें अंदर बाहर करते हुए खुद को शांत किया, फिर फ़ोन बेड पर रखकर साइड टेबल पर रखे जग से पानी ग्लास में गालकर पीने लगी। अब कहीं जाकर वो कुछ सामान्य हुई थी कि फ़ोन फिर से बज उठा। आहाना ने गुस्से भरी नज़र स्क्रीन पर डाली। दोबारा वही नंबर देखकर उसकी भौहें तन गईं। उसने गुस्से में कॉल रिसीव किया। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, रुको अभी भैया को फ़ोन देते हैं, अब वही तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएंगे। द्रीशांत यहाँ नहीं था, पर शायद वो इस अनजान शख्स के कॉल से कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई थी, इसलिए उसे डराकर उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसने द्रीशांत का जिक्र किया और मन ही मन महादेव की याद करने लगी कि साथ दे उसका, कहीं अपने बोले झूठ में वो खुद ही ना फंस जाए। उसके चुप होते ही दूसरे तरफ से शांत और गंभीर आवाज उभरी, आहाना। ये आवाज सुनकर आहाना बुरी तरह से चौंक गई। आवाज कुछ जानी पहचानी सी थी और जाने क्यों पर घबराहट के मारे उसके सीने में मौजूद दिल ये संबोधन सुनकर जोरों से धड़क उठा था। जी आप कौन बोल रहे हैं? आहाना के दिल का हाल उसकी लड़खड़ाती आवाज जाहिर कर गई थी। अल्फाज बिखर गए थे और सांसें बेचैनी से ऊपर नीचे होने लगी थी, पर अगले ही पल दूसरे तरफ से जो जवाब आया उसने आहाना के धड़कनों को थमने पर मजबूर कर दिया। पल भर में उसके चेहरे का रंग उड़ा था, आंखें बेयकीनी से फैल गई थी। अक्षय बोल रहा हूँ। अक्षय जी,
आहाना ने टूटे फूटे अल्फाजों में उसका नाम दोहराया। तुरंत बाद ही अक्षय की आवाज उसके कानों से टकराई। जी मैं। अक्षय के ये कहने की देर थी कि आहाना ने घबराहट में अपनी जीभ को दांतों तले दबाते हुए कसके अपनी आंखों को भींच लिया। समझ गई थी वो कि पहले भी उसी का फोन था और बिना ये जाने कि सामने कौन है वो बेवकूफों जैसे सब बोल गई। पहली बार अक्षय ने फोन किया और उसमें कांड कर दिया, उस पर इतना चिल्लाई और कैसी बकवास बातें बोल गई। आहाना को अपनी ही इस बेवकूफी पर खूब गुस्सा आया और मन ही मन खुद को कोसते हुए महादेव से प्रार्थना करने लगी कि अक्षय उससे कोई सवाल ना पूछ ले। आहाना की ओर से गहरी खामोशी आने पर अक्षय ने एक बार फिर उसे पुकारा। आहाना जी जी। आहाना ने हड़बड़ी में अपनी आंखें खोली, फिर घबराते हुए आगे बोली, आपने कैसे फोन किया? सॉरी, हमने आपको पहचाना नहीं था। आहाना, कौन आपको बार बार फोन और मैसेज करके परेशान कर रहा है? अक्षय ने सीधा ही सवाल किया। उसकी आवाज गंभीर थी और उसका ये सवाल सुनकर घबराहट के मारे आहाना के चेहरे पर इस ठंडी के मौसम में भी पसीने की बूंदें चहचहाने लगी थी। उसने हड़बड़ी में जवाब दिया, कोई नहीं। झूठ मत बोलिए आहाना, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। सच सच बताइए, कौन परेशान कर रहा है आपको? अक्षय तो इसी बात पर अड़ गया था जिसने आहाना की परेशानी बढ़ा दी थी। उसने कुछ पल सोचने के बाद बात टालने की कोशिश की, वो तो रॉन्ग नंबर था, सुबह से परेशान कर रहा है, इतनी बार मना किया पर समझ नहीं आता उसे। आहाना का झूठ सुनकर दूसरी तरफ मौजूद अक्षय की भौहें से कुड़कर आपस में जुड़ गई और चेहरे पर कठोर भाव उभर आए। वही सख्ती उसकी आवाज में भी झलकने लगी। आहाना, अगर झूठ बोल लिया हो तो अब सब कुछ सच सच बताइए मुझे, वो दोबारा परेशान नहीं करेगा, हमने बहुत सुनाया उसे और अब भैया को भी बता देंगे। आहाना ने उसके गुस्से भरी आवाज सुनकर मिमियाते हुए जवाब दिया और एक आखिरी कोशिश की अक्षय को इन सब से दूर करने की, पर अक्षय इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। मुझे बताने में क्या परेशानी है, होने वाला पति हूँ, आपका हक है मेरा ये जानने का कि मेरे रहते कौन आपको परेशान कर रहा है। अक्षय ने उससे अपना रिश्ता जाहिर करते हुए उस पर अपना हक जताया और आहाना इस बार उसके आगे हार गई।
वो प्रतीक है, आपसे पहले उनका रिश्ता आया था, चाचा जी रिश्ता लेकर आए थे, वो खुद तो नहीं आया था पर उनका परिवार हमारे घर आया था, दोनों तरफ से हाँ हो गई थी, रिश्ता तय होने वाला, पर तब भैया ने उसे किसी और लड़की के साथ देख लिया। थोड़ी छानबीन की तो पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। ये जानने के बाद भैया ने सबसे पहले पापा को पूरी बात बताई और रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट गया। पापा इस बात पर चाचा जी से बहुत नाराज भी हुए थे। कितना वक्त हो गया इस बात को, और जब रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट गया था तो अब वो आपको फ़ोन करके परेशान क्यों कर रहा है? 6 महीने हो गए, पहले तो सब ठीक था पर पिछले 3-4 दिनों से वो हमें अनजान नंबरों से फ़ोन कर करके परेशान करने लगा है। बस एक ही बात कहता है कि हमारे भैया की वजह से उसके पापा ने उसे घर से निकाल दिया, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया, हमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तो अब वो हमें भी चैन से जीने नहीं देगा। पता नहीं कहाँ से हमारा नंबर निकाल लिया है उसने, हमें खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। हम तो कभी उनसे मिले भी नहीं, पहले उनसे कभी बात भी नहीं हुई, अब पता नहीं क्यों वो हमें ऐसे परेशान कर रहे हैं। हमने समझाने की बहुत कोशिश की पर मानता ही नहीं, पहला नंबर ब्लॉक करते हैं तो नंबर बदल कर फ़ोन करता है, फ़ोन ना उठाओ तो मैसेज कर करके परेशान करता है। आहाना ने एक सांस में सारी बात उसे बता दी। उसकी आवाज़ से साफ जाहिर था कि वो कितनी ज़्यादा परेशान और फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। अक्षय ने जब पूरी बात सुनी तो गुस्से में उसकी मुट्ठियां कस गईं और जबड़े भींचते हुए उसने गुस्से व नाराज़गी के मिले जुले भाव से कहा, वॉट नॉनसेंस इज दिस, वो 3-4 दिनों से आपको परेशान कर रहा है, इतना टॉर्चर कर रहा है और आपने अब तक किसी को ये बात नहीं बताई। अक्षय के गुस्से भरी आवाज़ सुनकर आहाना सहम गई। हम बताना चाहते थे पर हमारी कुछ मजबूरियाँ थीं, एक तो अभी भैया यहाँ नहीं, अगर फ़ोन करके भैया को बताते तो वो पुलिस का सहारा लेते या पापा को बताते, इससे पापा और चाचा जी के बीच बात और बिगड़ती, इसलिए हमने सोचा था हम खुद से ही संभाल लेंगे, इसलिए नहीं बताई। ऐसे साइको लोग बातों से नहीं मानते आहाना, वो बेवजह अपनी गलतियों के लिए आपको ब्लेम कर रहा है, आपको इन सब में घसीट रहा है, और आपको पता है आपकी यूँ हाथ पर हाथ धरे बैठने से उसकी हिम्मत और बढ़ सकती है, वो आपको कमज़ोर समझकर आप पर हावी होने की कोशिश कर सकता है, आगे चलकर आपके लिए और बड़ी बड़ी परेशानियाँ खड़ी कर सकता है, ऐसे लोगों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। आप मुझे उसका नंबर दीजिए, मैं डील करता हूँ उससे अपने तरीके से। अक्षय की आवाज़ में नाराज़गी साफ छलक रही थी पर अब सख्ती नहीं थी, शायद उसने महसूस कर लिया था कि उसके गुस्से से आहाना सहम गई है और वो उसे डराना नहीं समझाना चाहता था। इस बार उसने नाराज़गी से पर नरमी से उससे बात की थी और उस नाराज़गी में भी आहाना के लिए उसकी फ़िक्र ही झलक रही थी, जिसे आहाना ने भी महसूस किया था। आहाना उसकी हर बात से सहमत थी पर जैसे ही अक्षय की आखिरी की बात सुनी वो एकदम से चौंक गई और घबरा कर बोली, आप क्यों करेंगे, हम भैया को बता देते हैं। आपको मुझ पर विश्वास नहीं आहाना? अक्षय की गहरी और सर्द आवाज़ में किए इस सवाल को सुनकर आहाना पल भर को ठिठकी, फिर हड़बड़ी में इनकार में सर हिला दिया, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो मुझे नंबर भेजने में कतरा क्यों रही हैं आप बहुत व्यस्त रहते हैं, हम बेवजह आपको परेशान नहीं करना चाहते। मुझे कोई परेशानी नहीं,
तो आप नंबर सेंड कीजिए मुझे और बेफिक्र रहिए, बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। कोई एक नंबर नहीं है, अलग अलग नंबर से ये कॉल्स आती हैं। जितने नंबर हैं सब भेजिए, आगे मैं देख लूंगा। अभी भेजे? आहाना ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए हैरत से सवाल किया। उसकी मासूमियत पर अक्षय अपना दिल हार बैठा और सौम्य सी मुस्कान उसके लबों पर बिखर गई। नहीं, जब हमारी बात हो जाए उसके बाद भेज दीजिएगा। अक्षय का जवाब सुनकर आहाना कुछ पल खामोश रही, फिर उसने अपनी नजरें झुकाई और अपनी उंगलियों से जमीन को कुरेदते हुए घबराते हुए बोली, आप हमें गलत मत समझिएगा, हम सच कह रहे हैं, हम उनके नाम के अलावा उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। हमने तो बस तस्वीर देखी थी, उनसे कभी मिले भी नहीं, हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, हमने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की और ना ही हमने उन्हें अपना नंबर दिया है। हमें नहीं पता कि कहाँ से उन्हें हमारा नंबर मिला, हम तो खुद बहुत परेशान हैं। विश्वास कीजिएगा हमारा, हम झूठ नहीं बोल रहे आपसे और धोखा भी नहीं दे रहे आपको, हमारा किसी गैर मर्द से कोई वास्ता नहीं। आहाना बोलते हुए रुआंसी हो गई थी, शायद उसे डर था कि कहीं अक्षय उसे गलत ना समझ ले, इस फोन कॉल की वजह से उनके नए नए जुड़े रिश्ते में गलतफहमी की दीवार ना खड़ी हो जाए। उसके मनोभावों को अक्षय बखूबी समझ रहा था, दुनिया तो कुछ हद तक उसने भी देखी थी, जानता था कि ऐसे मामलों में गलती भले लड़के की हो, लड़की बेगुनाह हो, फिर भी दोष उसी में ढूंढा जाता है, गलत उसे ही ठहराया जाता हो, सवाल उसके किरदार पर ही उठते हैं। आहाना की आवाज में आए भारीपन को महसूस करते हुए उसके चेहरे पर शांत व संजीदा भाव उभर आए। आहाना, रिश्ता जोड़ा है मैंने आपसे और भरोसा नहीं करूंगा आप पर, ये कैसे सोच लिया आपने? क्या आपको मैं ऐसा मर्द लगता हूँ जो अपनी लाइफ पार्टनर के किरदार पर सवाल उठाऊं, उस पर शक करूं, या आपको मेरा विश्वास इतना कच्चा लगता है कि एक फोन कॉल से टूटकर बिखर जाएगा? जवाब में दूसरी तरफ से बस खामोशी ही आई। अक्षय ने पल भर ठहरने के बाद गंभीरता से आगे कहना शुरू किया, आहाना, मेरा मानना है कि भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव होती है, और जहां भरोसा नहीं या ये नींव कमजोर हो वहां कोई रिश्ता नहीं जुड़ सकता। अगर विश्वास की कमी हो तो अच्छे से अच्छा और मजबूत से मजबूत रिश्ता भी ताश के पत्तों जैसे ढह जाता है, और मुझे आपके साथ जरा से हवा के झोंके से टूटकर बिखरने वाला कमजोर और नाजुक घरौंदा नहीं बनाना है, बल्कि विश्वास की अटूट डोर से जुड़ा मजबूत रिश्ता बनाना चाहता हूँ, जिसे बड़े से बड़ा आंधी और तूफान भी कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अपने मन से इस डर को निकाल दीजिए कि आज की बात के कारण मैं आपको गलत समझूंगा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है और ये विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा, और मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि भले ही अभी आप मुझे ज़्यादा नहीं जानती, पर आप मुझ पर विश्वास करें कि मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा, आपके प्रति हमेशा लॉयल रहूंगा, इतना विश्वास तो कर सकती हैं ना आप मुझ पर? जी, आहाना की धीमी सी आवाज़ उभरी थी, शायद अब भी वो भावुक थी और खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। आहाना, अपने भैया से मेरी शिकायत लगाते हुए क्या कहेंगी आप? कमिंग सून। अक्षय का जवाब कैसा लगा आपको, बताइएगा जरूर। आगे की बातचीत अगले भाग में।